फिर इसके बाद एक अच्छे लीडर और एक अच्छे किरदार की खूबी क्या है कि वो दूसरों को मोटिवेशन देने वाला है। इसीलिए नबी सल्लम के जरिए से फरमाया, आप क्या करेंगे ए नबी, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकरीन हक में 1,000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है, बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर, और 1,000 आदमी ऐसे हों तो 2,000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे, और अल्लाह इन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। आप बार बार पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सब्र वालों के साथ है, ये कौन सा सब्र है? ये अपनी जात को पीछे करने वाला सब्र है। आप देखिए कि बास दफा आपको कोई बात कहेगा आपको अच्छी नहीं लगेगी, बास दफा आप बड़े बेलौस तरीके से किसी की तरफ जाएंगे, कोई आपकी कदर नहीं करेगा, का सब्र करो। वल्लाहु मा साबिरीन, जब आप इस बात का यकीन कर लेंगे ना कि अल्लाह ने मुझे बदला देना है, यकीन करें कि आपको कभी किसी की बात नहीं चुभेगी। इसके बाद जो अगली चंद आयात है इसका खुलासा मेरा ख्याल है पहले कर देती हूँ। गज़वे बदर में कुफार की एक बड़ी तादाद जो थी वो कैदी बनकर मुसलमानों के हाथ आई। पहली जंग थी, जैसे माले गनीमत के बारे में नहीं पता था क्या करना है, इसी तरह कैदियों के साथ क्या किया जाए, अभी कोई अल्लाह ताला की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई। नबी सल्लम की आदत मशवरा करने की थी, ये भी एक हमारे लिए अच्छा अमल है कि मशवरा किया करें साथियों से। अपने साथियों से मशवरा किया, सबसे पहले अबू बकर से पूछा, नरम तबीयत के थे और हालात पे बड़ी गहरी नजर रखते थे, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम इन साथियों को आजाद कर दें और इनसे फिदिया ले लीजिए और वो पैसा इस्लाम की राह में काम आएगा, फायदा होगा हमें। नबी सल्लम का अपना भी रुझान कुछ इसी किस्म का था। उमर फारूक से मशवरा किया, उन्होंने कहा बिल्कुल भी ना ऐसा करें, इन सबको खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम की दुश्मनी लेकर जहनों में आए हैं, और ऐसा ना हो कि आज आप इनको छोड़ें अगले साल ये फिर जमात हो जाए। हजरत उमर की राय जो थी वो बजाहर सख्त थी, अल्लाह को भी वही पसंद थी। नबी सल्लम ने अबू बकर की राय और अपने मेलान की बुनियाद पे पहली राय पे अमल किया। अब क्या हुआ, उमर फारूक कहते हैं कि मैं थोड़ी देर गुजरी तो वापस आया तो देखा कि अबू बकर भी रो रहे हैं और नबी सल्लम भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कहा उमर, हम पे जो आयतें नाजिल हुई उससे पता चला कि तेरा मशवरा ठीक था हमारा गलत था। कौन सी आयतें नाजिल हुई, आइए इसको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा कान लिन्नबी यकून लहू असरा, किसी नबी के लिए ये जेबा ही नहीं कि इसके पास कैदी हो, जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फायदे चाहते हो, हालांकि अल्लाह के पेशे नजर आखरत है और अल्लाह गालिब और हकीम है। अगर अल्लाह का लिखा हुआ पहले से न हो चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया इसकी पादाश में तुमको बड़ी सख्त सजा दी जाती। बस जो कुछ तुमने माल हासिल किया उसे खाओ, और क्योंकि वो हलाल और पाक है, अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ नबी, तुम लोगों के कब्जे में जो कैदी हैं इनसे कहो, अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो तुम्हें इससे बढ़ चढ़ कर देगा जो तुमसे लिया है, और तुम्हारी खताएं माफ करेगा, और अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो तेरे साथ खयानत का इरादा रखते हैं तो इससे पहले वो अल्लाह के साथ खयानत कर चुके हैं, चुनांचे इसी की सजा अल्लाह ने इनको दी कि वो तेरे काबू में आ गए, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता और हकीम है। इस वाक्य में हमारे लिए बहुत सारी अमल की बातें। पहली बात यह कि राय का इख्तलाफ लोगों को अलग नहीं करता। अबू बकर ने उमर को फिर ताना नहीं दिया और उमर ने अबू बकर के सामने बड़ाई नहीं की, देखा मेरी राय कितनी अच्छी थी। देखिए, जब मशवरा दें सदाकत के साथ दें, सिद्ध के दिल से दें, अल्लाह से दुआ करके दें, उसके बाद आपके मशवरे पे अमल किया, कामयाबी हो गई तो कहना देखा मेरा मशवरा था, ये मैंने कहा था। हम तो यूं कंधे उछाल उछाल के अपनी तारीफें करते, ये मेरा मशवरा था, और बिलफर्ज किसी दूसरे ने कोई मशवरा दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, वो मान लिया गया, अब हो गई नाकामी, देखा ये उनका मशवरा था, मैं तो पहली कहती थी, मैं तो पहली। याद रखिए आपका मेरा ये जो छुलबुलापन होता है ना, जिसको पंजाबी में क्या कहते हैं कि छोटे बर्तन में कुछ बढ़ जाए ज्यादा तो उछलने लगता है, ये थोड़ीलापन जो होता है ना ये हमारे अंदर की हकीकत खोल देता है। आपके मशवरे पे अमल किया, फायदा हुआ, चुपके रहे, दिल में क्या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी जुबान से अच्छा फैसला करवा दिया, अच्छा मशवरा दे दिया। आपने मशवरा दिया, अगले ने नहीं माना, दिल बुरा हुआ, दिल में के चले अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही होगी इसमें। आपने जो मशवरा दिया उससे ऑपोजिट बात किसी ने मानी और नुकसान हुआ, क्या कहे, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे अच्छी बात सुझा दी थी, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ आगे नहीं होगा, किसी मौके पे बड़ा ना बने। ऐसे वक्त में मेरा असल खुलता है। आपको मुझे नहीं पता कि मैं कितने खुद पसंद है, आपको मुझे नहीं पता कि हमारे अंदर कितना किबर छुपा हुआ है, आपको मुझे नहीं पता कि हमारे दिलों में कितनी रंजिश है एक दूसरे के लिए। कहाँ से खुलती है? ये हमारे जुमलों से और हमारे रिएक्शन से खुलती है। इसीलिए इस आयतों को हम बुनियाद बनाकर आज के मुसलमानों को फिर यही पैगाम है कि जो हुआ सो हुआ। आज से अगर आप और मैं अपने ऊपर ये बात रख लें कि जो फैसला अल्लाह ने कह दिया, रसूल ने कह दिया, उस पर राजी हो जाए, मुतमईन हो। और आपको पता कि बदर की जंग इतना बड़ा रिश्तों का इम्तिहान था, अपने सगे रिश्तेदार मुकाबले पे आए हुए, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला, दो बेटे थे अबू बकर के, उनमें से एक अभी कुफर पे था। मैदान जंग के बाद बाप को आके कहते हैं, अब्बा जान आपको पता है एक आध बार आप मेरी तलवार की जद में आगे थे और मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। देखिए कहना कितना आसान है, यहाँ बैठ के कितने प्यार से मैं कह रही हूँ, और अमली मैदान में जाकर मामू की गर्दन पे छुरी चलाने वाली बात कितनी बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि हम छुरियां चलाएं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि ये सूरतें आपको मुझे कैसे रिश्तों के इस दलदल से निकालती हैं। हजरत उमर ने बल्कि ये कहा कि हम में से जिसका जो रिश्तेदार है वो उसको दे दें, अपने हाथ से छुरी चलाए, ताकि अल्लाह देख ले कि हमें अल्लाह और उसका रसूल हमें सबसे प्यार है। ये ईमान बोल रहा था। लेकिन आप देखिए कि उस वक्त वो कामयाब हो गए, उन्होंने काबू पा लिया। हजरत अबू बकर ने कहा, अल्लाह के बंदे तू मुझे नजर आता, मैं तो तुझे कभी ना छोड़ता, मैं तो ढूंढ रहा था तू बदबخت है किधर, कि तू अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले पे निकल आया। ये जरूरत बड़ी देर से आती है, मुझे पता है अभी नहीं आएगी हमारे अंदर, लेकिन दुआ कीजिए, ऐसा कर लीजिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से लेकर जाए और अच्छे तरीके से करें। और आपको पता है कि खैर फिर भी इसमें निकली, वो जो कैदी बना दिए गए थे और उनको तबलीग की गई, उनमें से बहुत सारों के दिल में ईमान पैदा हो गया, इन्हीं ने फिर मदीना में मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाया। तो बात असल ये है कि सहाबा वो थे जिन्होंने इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान किया। आज का मुसलमान इस्लाम को कुर्बान करके खुद को बचा लेता है। मोमिन का माइंड कभी कैलकुलेटिंग माइंड नहीं होता कि पहले देखो इस हुक्म पे अमल करने से फायदा होगा या नुकसान होगा, बल्कि वो कर लेता है, वो चल जाता है। इसके बाद अब सूरत की आखिरी आयतें हैं, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, और इसी में हमारे लिए आज के रोल मॉडल भी छुपे हुए हैं। और वो कौन थे? वो अंसार और मुहाजरीन थे। आइए थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देखते हैं कि इनके अंदर हमारे लिए क्या गाइडलाइन है। आयत 72, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअमवालिहिम व अन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बादुहुम औलियाउ बाद। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की, ये कौन है? मुहाजरीन मक्का, और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाई और अपने माल खपाए, दूसरा गिरोह। और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, कौन? अंसारे मदीना। वही दरअसल एक दूसरे के वली हैं। इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शय, रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुस्सलाम में आ नहीं गए, तो इनसे तुम्हारा विलायत का कोई ताल्लुक नहीं जब तक कि वो हिजरत ना कर लें। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो इनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे देखता है। जो लोग मुनकरे हक हैं वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं, अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा। रह गए वो लोग जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जिद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। इनकी खताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम ही में शामिल हैं। नए लोगों को वेलकम करो, मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। ये है वो चंद आयात जिसकी टर्म पे आज हम बहुत अच्छे तरीके से ये टर्म जानते हैं, अंसार और मुहाजरी। देखिए कि मक्का से जिन्होंने घर बार छोड़े, अपनी सारी चीजों को छोड़ा, वो किस लिए निकले थे मक्का से? ईमान बचाकर। और आज भी यही हुक्म है, किसी जगह अगर आपको लगता है कि आपका ईमान खतरे में, आपकी औलाद बिगड़ रही है, आप अपने दीन पे अमल ही नहीं कर पा रहे, इजहार नहीं कर रहे, तो खुद को फितनों में ना रखें। फिर आप जाइए ऐसी जगह पे जाएं जहां आपका ईमान पुख्ता हो। आप सोचते हैं आपके ईमान में कोई कमी नहीं होती, आप अपने दीन पर पूरे यकीन से अमल करते हैं, तो दुनिया के किसी कोने में रहें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला उसमें खैर देगा। दूसरी बात आप देखें कि नायात में हमें अंसारे मदीना का किरदार है। चलिए जो मक्का से 13 साल की चोटें खाकर आए थे उन्होंने तो देख ही ली थी परसिक्यूशन, किस तरह इस्लाम के नाम पे उनको तकलीफें दी गई, लेकिन अंसारे मदीना के क्या दिल खुले हुए थे। घर खोल दिए, दरवाजे खोल दिए। अब वो युवल अंसारी का वाकया आपने पढ़ा होगा, गरीब सहाबी थे, बीवी से कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह के नबी आए तो मेरे पास मेहमान बने, मैं उनका मेजबान बनूं। बीवी ने कहा तुम कैसी बातें करते हो, तुमने साद और माज और बड़े लीडरों को नहीं देखा, ये मदीना के बड़े बड़े सरदार थे, तो अल्लाह के नबी सरदार हैं, वो तो उधर ही जाएंगे। कहा अच्छा मैं अल्लाह से तो मांग सकता हूँ। चुपके चुपके तैयारी में मसरूफ है, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना में आते हैं तो क्या है, आपने कहा मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरी ऊँटनी रुकेगी, क्योंकि ऊँटनी भी अल्लाह की तरफ से मामूर है। पहले एक जगह पे बैठी तो उठ गई, आपने कहा ये जगह किसकी है, कहा यतीम बच्चों की है, किन की है, फलां के, कहा उनको बुलाओ। बुलाया, कहा ये जमीन अल्लाह के लिए बेचते हो या अल्लाह का घर बनेगा। अपने घर से पहले अल्लाह का घर बनाने की फिक्र की, हम पहले अपने रहने की फिक्र करते हैं, अपने घर बनाते हैं फिर कहते हैं अच्छा अब अल्लाह के घर बनेंगे। खैर उन्होंने कहा हम फ्री में देते हैं जगह, का नहीं मैं नहीं लूंगा, अल्लाह के दीन के लिए लेना पैसों से लूंगा, कल तो रिवायत पड़ जाएगी कि लोगों की जमीनों पर कब्जे करके मस्जिदें बना दो। खैर बहुत तो किया, कहा यहाँ मस्जिद बनेगी, ऊँटनी फिर चल पड़ी और चली क्या, वो अयूब अंसारी के घर के आगे से गुजर गई, उनका दिल बुझ गया, परेशान हो गए, कहा अच्छा मेरे नसीब में नहीं है। आगे गई ऊँटनी थोड़ा सा आगे चल के फिर वापस गई, आके फिर वहीं बैठ गई, कहा मैं यहीं बैठूंगा। ये कौन थे आप, पता है अंसारे मदीना गरीब लोग थे, किसान थे बेचारे, मक्का में तिजारत होती थी, खाना काबा की वजह से बहुत अच्छी मईशत थी, उनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी। मदीना तो बिल्कुल ऐसे जैसे आज का पाकिस्तान का कोई छोटा सा गांव, जहाँ लोग जमींदारी करें और रोटी पानी कमा लें। अल्लाह के नबी अबू अय्यूब अल अंसारी के घर में रहे, क्या उनका प्रोटोकॉल था, क्या उन बेचारों की इज्जत थी। घर की छत पे ऊपर का कमरा अल्लाह के नबी के लिए रखा, क्यों, कहा आप ऊपर बैठे, आपने कहा मैं ऊपर नहीं रहूंगा मैं नीचे रहूंगा, लोग मिलने आएंगे ये है वो है, कहा नहीं, एक रात सिर्फ नबी सल्लम नीचे रहे। उनकी बीवी कहते हैं सारी रात अबू अय्यूब अंसारी दीवारों के साथ साथ फिरते रहे, इधर नहीं बैठे कि नीचे नबी की चारपाई होगी तो मैं नीचे कैसे हूँ। इसी घबराहट में पानी का मटका फूटा, पानी गिरा, छत टपकने लग गई, अगले दिन आके हाथ बांधे आप ऊपर चले जाए मैं नहीं रह सकता। आप देखिए कि ये मोहब्बत कहाँ से आई, अल्लाह तबीना कलूबिकम, अल्लाह के नबी को गिफ्ट्स का पार्सल्स लेकर गए थे उनके लिए। ये दीन की कोशिश, ये दीन के काम के मेरी कोई चीज इसमें इस्तेमाल हो जाए, मेरा सदका जारिया बन जाए। आपको खाने का थाल भेजते, उसके बाद जब खाना वापस आता उंगलियों के निशान देख देकर उन पर हाथ फेर कर आपका बचा हुआ खाना खाते थे। एक दिन जब थाल गया वापस वैसे का वैसा आ गया, घबरा गए, अल्लाह के नबी परेशान है क्या हुआ मेरा खाना क्यों नहीं खाया, कहा इसमें कच्चा लहसुन और प्याज था और मेरे पास फरिश्ता आता मैं नहीं खा सकता तुम लोग खा लो। आप देखिए कि ये उल्फतें थी सहाबा की, आने वाले किसी जमीन के टुकड़ों पे कब्जा करने नहीं आए थे, और जिन्होंने बुलाया उन्होंने ये सोचकर नहीं कहा कि जरा हमें बाद में कुरान में ये टाइटल्स मिलेंगे। आज के दौर में इस बेलौस किरदार की जरूरत है दीन को फैलाने के लिए। दुनिया के किसी कोने में मुसलमान जाए, अपनी जात के लिए पैसे कमाने रेफ्यूजी बनने नहीं जाए, वो अल्लाह के दीन के लिए जाए। और जिस तरह से उन्होंने दिल खोले, अंसार की कहानी आपने सुनी होंगी, कहा मेरी दो बीवियां बताओ एक को तलाक देता हूं तुम शादी कर लो, क्योंकि मुसलमान औरतें ही नहीं थी इतनी, और साहबा अपनी बीवियां छोड़ा है जिनकी बीवियां कुफर पे थी। यानी एक डायवर्शन है, आप कह लीजिए कि जब भी नया नया दीन कहीं आता है ये सब कुछ होगा जो उस दौर में हुआ था। अब सवाल पैदा होता है कि आज मैं और आप अंसार कैसे बने, और आज मैं और आप कैसे मुहाजिर बने। सबसे पहले बात है गुनाहों से हिजरत कीजिए, याद रखिए हिजरत सबसे पहले जिस चीज से अल्लाह ने रोका उससे रुके, बुरी आदतों से हिजरत, बुरे रिस्क से हिजरत, खराबियों से हिजरत। आप देखिए कि अगर गीबत की आदत ही तो गीबत से हिजरत कीजिए, और सब्र के बगैर हिजरत नहीं होती। अगर आपने फीलिंग्स दे दी कि मैं अभी नहीं थोड़ी देर बाद, अच्छा चलो अभी नहीं कर सकती, बस लोगों के दिल में बड़ी चीजें होती हैं लेकिन वो उसका इजहार नहीं करते, नहीं आप हिजरत करें। किस चीज से हिजरत करें, अपनी बुराइयों से हिजरत करें। कल तक झूठ बोलने की आदत थी, आज से नहीं बोलूंगी, मैंने अल्लाह के लिए हिजरत की। मुझे सुबह देर तक सोने की आदत थी, आज से नींद को कुर्बान कर रही हूँ। आप देखेंगे कि इससे कितना ज्यादा फायदा होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा। दूसरी बात आप देखिए कि इसमें एक और बड़ी अहम बात है, कुछ लोग दीन पे आके जम चुके होते हैं अल्लाह के हुक्म से, उनके घर वाले भी मुवाफकत में आ गए, उनको पता लग गया अब इन्होंने दीन ही सीखना है, इन्होंने दीन की खिदमत करनी है, इन्होंने इंसानियत की खिदमत करनी है। कुछ अभी बड़े नए नए आ रहे हैं, उनके घर वाले भी उनसे नाराज, उनके ससुराल भी नाराज, सब उनको आग करने की तैयारियों में। वो मुहाजिर हैं जो अब आ रहे हैं नए नए, जो पहले से जमे हुए थे वो अंसार बन जाए। रब्ते करें, लोगों को करीब करें। मत कहें कि आपने मैंने 10 पारे पढ़ लिया, हम बड़े नेक हो गए हैं। कई लोग हो सकते हैं अभी डर रहे हों, पता नहीं कुरान कैसे पढ़ते हैं, पता नहीं ये क्या है। आपका मेरा काम क्या है? अच्छे तरीके से लोगों को थामें। जब नीयत ये होगी ना कि हाथों में हाथ डाल के जन्नत में जाना है, फिर आप देखेंगे कि फ़ायदा होगा। और याद रखिए, इस आयत से ये भी पता चलता है, ईमान लाने के बाद दो ही कड़े इम्तिहान हैं, या हिजरत है या जिहाद है। जो ईमान लाने के बाद दिन ब दिन अपने अमली तकाजों में अपने आप को सच्चा साबित नहीं करता, फिर उसका इस्लाम भी खराब है। सबसे पहला दर्जा होता है मुस्लिम। आप इमेजिनेशन में लाएं कि जैसे एक स्लोब है, जैसे ये बुक मार्क है। अब एक शख्स नीचे है, इधर पहुंच गया। अब यहां पहुंच कर अगर वो और ऊपर जाने की कोशिशें नहीं करेगा ना, तो नीचे गिरेगा, स्लोप पे खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह ईमान एक दर्जे पे आकर रुक जाए, निफाक की तरफ ले जाता है। सारी बात का खुलासा क्या? दिन ब दिन अपनी नेकियों को बढ़ाएं। इस्लाम है, मुस्लिम है, ऊपर जाएंगे मोमिन बनेंगे, और अगर इससे नीचे लुढ़के तो मुनाफिक बन जाएंगे। मोमिन बनने के लिए हिजरत और कुर्बानी लाजिम है। हिजरतों और कुर्बानियों के बगैर अल्लाह के दीन के पौधे पे बहार नहीं आती। सारे नहीं, कुछ को तो कुछ हिजरतें करनी पड़ेंगी, और सबसे मुश्किल जिहाद ही है। दुश्मन से तो अल्लाह ना करे कभी लड़े और किसी को मौका पड़े ऐसा, लेकिन अपने नफ्स से लड़ना ही सबसे बड़ा जिहाद है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। और आप देख रहे हैं, इल्ला तफलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, ये सब कुछ ईमान के बाद हिजरत और कुर्बानियाँ, तो फिर फितना बहुत होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इस चीज़ पर लेकर चले। अब इसके बाद हम पहले इन आयतों की तिलावत सुनते हैं। आप ये आखिरी आयतों को जज्ब करें, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमने एज अ रोल मॉडल अंसार और महाजरीन को लिया है, तो उस पे दो जुमले बोल देती हूँ, शायद अमली फ़ायदा हो जाए। आज घर जाकर सोचिए किस किस चीज़ से हिजरत करनी है, लिखिए इंशाल्लाह, और साथ कहिए कि अल्लाह मुझे महाजरीन का अजर दे दे और अंसार बनना है। मैं आज के दौर में दीन की मददगार कैसे बन सकती हूँ? वो तो किससे पुराने थे, वो गए, वो कर चुके। साहबा खुद साज नहीं थे, तारीख साज थे, आज हम खुद साज हैं। तो आपने, मैंने आज से कल तक इंशाल्लाह इस बात पे सोचना है, आज के दौर में मैं अंसार मदीना को रोल मॉडल कैसे बनाऊं? क्या आज जरूरत है दीन को किसी चीज की? क्या आज दीन इस्लाम को टैलेंट की जरूरत है? हमारे वक्त की जरूरत है? हमारे माल की जरूरत है? हमारे पैसे की जरूरत है? किस चीज की जरूरत नहीं है? आज तो दीन ऐसे गरीब पड़ा पड़ा है कि जैसे यतीम बच्चा जो है वो बेचारा दूसरों का मुंह देख रहा होता है, कभी कोई रोटी खिला दे, कोई कपड़े पहना दे। आज हमारा दीन इस तरह टुकड़ियों में बटा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए तिलावत सुनते हैं इन आयतों की, कि हमें सच्चे जज्बे अता फरमाए और दिखावे, रियाकारी और शोहरत से बचाए।
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم